ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 204। योगी बोले, हे मुनीश्वर, यह आश्चर्य है कि जो पदार्थ सुखदायक नहीं है उनकी ओर चित्त बड़ा यत्न करता है, पर तो भी वे सिद्ध नहीं होते, पर वे अयत्न सिद्ध आत्मपद को त्याग देते हैं। जिनको यह जीव सुख जानता है वे सब दुख के स्थान है। जिस अपने होने को यह भला जानता है वह अनर्थ का कारण है। जिस देह को जीव सुखरूप जानता है वह सब रोगों का मूल है। जिनको यह भोग जानता है वे इसको दुख देने वाले परम रोग है, और जिनको यह सत्य जानता है वे सब मिथ्या है। जिनको यह स्थिर जानता है वे स्थिर नहीं चल रूप है। जिनको यह रस जानता है वे सब विरस है। जिनको बांधव जानता है वे सब अबांधव और दृढ़ बंधन रूप है। जिसको यह सुख देने वाली स्त्री जानता है वह सर्पिणी परम विष उगलने वाली है। उसका काटा मर जाता है फिर नहीं जीता, अर्थात आत्मपद में स्थित नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं देह को परम आपदा का कारण जानता हूँ। इसके निवृत्त होने पर जीव परम पद को प्राप्त होता है। जिन पुत्र धन आदि को यह जीव संपदा जानता है वे परम दुख रूप आपदा है। इनमें सुख कदापि नहीं, यह बात मैं सुनकर नहीं कहता, मैंने देखकर विचार किया है, विचार करके अनुभव किया है और अनुभव करके कहा है कि यह संसार माया मात्र है। बड़े बड़े स्थानों में भी मैं गया हूँ, परंतु सार पदार्थ मुझको कोई नहीं देख पड़ा। स्वर्ग में नंदनवन आदि काष्ठ रूप ही दिखे, मृत्युलोक में आकर देखा तो पंचभूत ही देखे, शरीर में रक्त मांस हाड़ मूत्र आदि देखे। ऐसे शरीर में जो अहम प्रत्यय करते हैं उनको मैं धिक्कार देता हूँ। शरीर की आयुष्य ऐसी है जैसे दोनों हाथों में जल लीजिए तो बह जाता है, अथवा जैसे जल में तरंग बुलबुले उपजकर नष्ट होते हैं या बिजली की चमक होकर नष्ट हो जाती है। जो ऐसे शरीर को पाकर सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख है। बाल अवस्था तरंग की नाई नष्ट हो जाती है, यौवन अवस्था बिजली की चमक से छिप जाती है, वृद्धावस्था में केश श्वेत हो जाते हैं और दांत घिसकर गिर पड़ते हैं। जैसे नीचे स्थान में जल स्थिर हो जाता है वैसे ही सब रोग वृद्ध अवस्था में घेर लेते हैं और तृष्णा दिन दिन बढ़ती जाती है। हे मुनीश्वर, उस समय सब पदार्थ जर्जर हो जाते हैं और तृष्णा जवान होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी बढ़ती जाती है और जो सुख भोग प्राप्त होकर बिछुड़ जाते हैं उनका दुख होता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार इनको असत्य जानकर मैं स्वरूप में स्थित हुआ हूँ। यदि पांचों इंद्रियों के इष्ट विषय की बड़ी उत्तम मूर्ति रखकर उपस्थित हो तो भी मुझको आकृष्ट नहीं कर सकते। जैसे मूर्ति की लिखी कमलिनी भौरे को नहीं खींच सकती, वैसे ही मुझ सरीखे को विषय नहीं चलायमान कर सकते। हे मुनीश्वर, तुम्हारा शरीर मैंने अवज्ञा करके डाल दिया है, विचार से नहीं फेंका। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि जो त्रिकालज्ञ है वे भी इस चर्म दृष्टि से नहीं देख सकते। जब विचार से देखते हैं तभी जानते हैं। इस कारण विचार बिना मैंने तुम्हारा शरीर फेंक दिया, अब तुम क्षमा करो। योगेश्वर विचार से ही भूत भविष्यत और वर्तमान को जानता है। इन नेत्रों से तो वही जाना जाता है कि जो अग्रभाग में होता है, विशेष नहीं जाना जाता है। इस कारण मुझसे तुम्हारा शरीर गिरा है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब मैंने उसे कहा, हे साधु, मैंने भी तुझे विचार बिना गिराया है कि विचार बिना मैं उठ गया था। यह कुटी मेरे अंतवाहक संकल्प में थी, सो मैं अपने स्थान को चला, इस कारण यह कुटी गिर पड़ी और तुम भी गिर पड़े। जो बीत गई सो भली हुई, उसकी क्या चिंता कीजिए। ज्ञानवान बीते की चिंता नहीं करते। जो होनी थी सो भली हुई है। हे साधु, अब जहां तुम्हें जाना है वहां जाओ और हम भी जाते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चर्चा करके हम दोनों आकाश मार्ग को उड़े। जैसे पक्षी उड़ते हैं और परस्पर नमस्कार करके अलग हो गए, वह अपने स्थान को गया और अपने स्थान को चलकर बहुतेरे स्थान देखता गया, परंतु मुझको कोई न जानता था। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण वृत्तांत जो मैंने तुमसे कहा है उसे तुम विचारो। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आपने जो सिद्ध के साथ समागम किया था तो आकाश मार्ग में कैसे शरीर से किया? आपका पंचभौतिक शरीर तो पृथ्वी पर पड़ा था और पृथ्वी में अनुरूप हो गया था, फिर आप किस शरीर से विचरे? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अंतवाहक शरीर से मैं विचरता फिरा था और उसी से सिद्धों देवताओं इंद्र वरुण और कुबेर के स्थानों में फिरा हूं, परंतु मुझे कोई न देखता था, मैं सबको देखता था। संकल्प रहित पुरुष से मेरा व्यवहार हुआ था और किससे कहूं? राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, अंतवाहक शरीर तो इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर सिद्ध से आपने चर्चा कैसे की और उसने आपको कैसे देखा? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जो तुम कहते हो तो सुनो। सिद्ध को मैं इसलिए देख पड़ा कि मेरा संकल्प सत्य था। मुझे यह फुरना हुआ कि सिद्ध मुझे देखे और मुझसे चर्चा करे। इसमें उसने मुझको देखा और उसका संकल्प भी मुझ में आया तब जाना। जो दोनों सिद्ध हो और उनका संकल्प भिन्न भिन्न हो तो एक दूसरे के संकल्प को नहीं जानते, परंतु किसी का विशेष संकल्प हो तो वह दूसरे के संकल्प को जानता है। इससे यद्यपि उसका संकल्प मेरे देखने को न था, पर मेरे दृढ़ संकल्प था, इसे मैं उसके संकल्प को खींचकर अपनी ओर ले आया। जो बलि होता है उसी की जय होती है, इसे उसने मुझको देखा। हे रामचंद्र जी, जो अंतवाहक में स्थित होता है उसको तीनों कालों का ज्ञान होता है, परंतु व्यवहार में लगे तो उसे भूल जाता है। और जो वर्तमान पदार्थ होता है उसी का ज्ञान होता है, इसी कारण उसने मेरा शरीर डाल दिया था, क्योंकि वह समाधि के व्यवहार में लगा था और मेरे संकल्प से वह कुटी भी तब गिरी थी जब मैं अपने स्थान के व्यवहार को ऐसा चिंतन करके चला था। जो मैं चिंतन में न होता, अंतवाहक शरीर में होता और उस कुटी का भविष्यत विचार उस संकल्प को रहने देता तो वह सिद्ध न गिरता। पर मैं तो और ही व्यवहार में लगा था, इससे अंतवाहक शरीर भूल गया, जिससे वह कुटी गिर पड़ी और सिद्ध भी गिर पड़ा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सिद्ध गिरा, उससे चर्चा हुई, तब मैं वहां से चला और अंतवाहक शरीर से आकाश मार्ग में फिरने लगा। सिद्धों के समूह और देवता विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम आदि सबके स्थान देखे, परंतु मुझको किसी ने न देखा। मैं बड़े बड़े शब्द करता कि किसी प्रकार कोई शब्द सुने और मुझको देखे, परंतु मेरा शब्द कोई न सुनता और न कोई मुझको देख पाता। जैसे स्वप्न में कोई शब्द करे तो उसका शब्द कोई जागृत मनुष्य नहीं सुनता, और जैसे न संकल्प वाला दूसरे के सृष्टि व्यवहार का शब्द नहीं सुनता, वैसे ही मुझको कोई न जानता था। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैं प्रथम आकाश में पिशाच किनाई विचरा, फिर दैत्यों के स्थानों में विचरा। मैं सबको देखता था पर मुझको कोई न देख पड़ता था, पर मुझको कोई न देख पाता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पिशाच का शरीर जाति और क्रिया कैसी होती है, उनके रहने का स्थान कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पिशाच की कथा से कुछ प्रयोजन न था, तथापि तुमने प्रसंगवश पूछा है, इससे मैं कहता हूं। पिशाच का आकार नहीं होता, वे जो रूप रखते हैं सो सुनो। कई तो आकाश की नाई शून्य होते हैं और परछाई की नाई डराते हैं, कई शुकर और कई काक रूप रखकर स्थित होते हैं। ऐसे रूप रख वे विचरते हैं और सबको देखते और जानते हैं, पर उनको कोई नहीं जानता। शीत उष्ण से वे दुख पाते हैं और इच्छा, द्वेष, लोभ, मान, मोह, क्रोध आदि विकार उनमें भी रहते हैं। शीतल जल और अच्छे भोजन की भी वे इच्छा करते हैं और नगरों, वृक्षों और दुर्गंधपूर्ण स्थानों में भी रहते हैं। कहीं सियार होकर दिखाई देते हैं और कहीं श्वान होकर दिखते हैं। मन में भी प्रवेश करते हैं और मंत्र, पाठ, दान आदि से जो वश होते हैं वह भी अपनी अपनी वासना के अनुसार होते हैं। इनमें भी उत्तम, मध्यम और नीच होते हैं। जो उत्तम है वे देवताओं के स्थानों में, मध्यम मनुष्यों के स्थानों में और नीच नरकों में रहते हैं। इनकी उत्पत्ति अचिंत्य चिन्मात्र से, जो दृश्य से रहित शुद्ध चैतन्य है, हुई है। हे रामचंद्र जी, सबका अपना रूप वही चैतन्य सत्ता कल्प वृक्ष की नाई है। उसमें जैसी जैसी वासना होती है वैसा ही वैसा पदार्थ होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, न कहीं पिशाच है और न जगत है, ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। शुद्ध आत्म तत्व मात्र में किंचन अहम होकर फुरा है, उसी को जीव कहते हैं। उस अहम की दृढ़ता से मन फुरा है, वह मन ब्रह्मारूप होकर स्थित हुआ है। उस ब्रह्मा ने मनोराज्य से आगे जगत उत्पन्न किया है और ब्रह्मा ही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। वह ब्रह्मा ब्रह्म में स्थित है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा का शरीर अंतवाहक और केवल आकाश रूप है और उसके दृढ़ संकल्प से आदि भौतिक जगत दृढ़ हुआ है। उसी मन से और मन हुआ है। हे रामचंद्र जी, जैसे ब्रह्मा का शरीर अंतवाहक है वैसे ही सबका शरीर अंतवाहक है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आधि भौतिक भासित होता है और सब मन रूप है परंतु दीर्घकाल का स्वप्न है। वह जागृत होकर स्थित हुआ है, इससे दृढ़ भासित होता है। जिनको शरीर में अहंकार है उनको जगत आदि भौतिक भासित होता है और जो प्रबोध रूप है उनको सब जगत संकल्प रूप है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, न तुम हो न मैं हूं, न ब्रह्मा है और न जगत है, सभी ब्रह्म रूप है। जैसे आकाश और शून्यता में, अग्नि और उष्णता में, वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्मा और जगत दोनों अज है, न ब्रह्मा ही उपजा है और न जगत ही उपजा है, दोनों ब्रह्म रूप है। जो ब्रह्म से भिन्न दिखता है वह भ्रांति मात्र है।
हरि ओ हरि ओ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।